एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे जिसने न सिर्फ अपने दौर पर बल्कि शायद हमेशा के लिए साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मैं बात कर रही हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे के मशहूर उपन्यास फॉर हूम द बेल टोल्स के।
बिल्कुल, हेमिंग्वे मतलब अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1899-1961, एक ऐसा नाम जिसे 20वीं सदी के साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता।
हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे और उस लॉस्ट जेनरेशन का एक अहम हिस्सा है ना, जो पहले विश्व युद्ध के बाद मोहभंग झेल रही थी।
सही कहा, और उनकी वो लिखने की शैली आइसबर्ग थ्योरी जिसे कहते हैं, ऊपर से देखो तो सीधी साधी भाषा,
बिल्कुल सपाट।
हाँ, लेकिन सतह के नीचे मतलब भावनाओं और विचारों का पूरा समंदर, और उनके अपने अनुभव जैसे युद्ध, शिकार, घूमना फिरना, वो सब उनके लेखन में झलकता है। और ये उपन्यास फॉर हूम द बेल टोल्स ये 1940 में आया। इसकी पृष्ठभूमि है स्पेनिश गृह युद्ध, मतलब 1936 से 1939 तक चला था वो।
हाँ, और हेमिंग्वे खुद वो रिपब्लिकन पक्ष के समर्थक थे, फासीवाद को वो एक बड़ा खतरा मानते थे।
लेकिन ये किताब सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब जिंदगी के बड़े सवालों से जूझती है, प्रतिबद्धता, बलिदान, प्रेम
और मौत के साये में जिंदगी कैसे जी जाए, ये सब।
बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम उपन्यास की कहानी, उसके पात्र, जो मुख्य विचार हैं, और हेमिंग्वे की लिखने की कला, इन सब को थोड़ा करीब से समझें।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का हीरो कौन है?
कहानी का मुख्य पात्र है रॉबर्ट जॉर्डन, एक अमेरिकन है, विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, स्पेनिश भाषा और संस्कृति की अच्छी जानकारी रखता है।
लेकिन वो स्पेन में क्या कर रहा है?
वो अपने आदर्शों के लिए लड़ने आया है, स्पेनिश गृह युद्ध में फासीवाद के खिलाफ रिपब्लिकन की तरफ से, और उसकी खासियत है विस्फोटक, मतलब वो एक डायनामाइट एक्सपर्ट है।
अच्छा, एक बम विशेषज्ञ।
हाँ, और उसे एक मिशन मिला है, बहुत ही मुश्किल, खतरनाक मिशन।
क्या है वो मिशन?
उसे दुश्मन के इलाके में अंदर जाना है, पहाड़ों में एक पुल है, उसे ठीक समय पर उड़ाना है।
अच्छा, क्यों?
ताकि जब रिपब्लिकन सेना हमला करे तो दुश्मन की मदद के लिए और सेना उस पुल से ना आ पाए। मिशन बहुत जरूरी है, पर उतना ही जानलेवा भी।
यहाँ थोड़ा रुककर उस समय को समझना जरूरी है। स्पेनिश गृह युद्ध, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ स्पेन की लड़ाई नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो जैसे दुनिया का अखाड़ा बन गया था, एक तरफ लोकतंत्र समर्थक रिपब्लिकन्स, दूसरी तरफ जनरल फ्रैंको के राष्ट्रवादी।
और इसे अक्सर दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है।
हाँ, विचारधाराओं की टक्कर थी, और रॉबर्ट जॉर्डन जैसे विदेशी लोग जो वहां लड़ने गए, वो उस दौर के आदर्शवाद को दिखाता है ना?
बिल्कुल। जैसे कि कहीं आजादी खतरे में है तो वो हर जगह खतरा है। जॉर्डन का वहां होना इसी सोच का सबूत है।
तो इस खतरनाक मिशन के लिए जॉर्डन अकेला तो नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से कुछ छापामार लड़ाकों पर निर्भर है जो पहाड़ों में छिपे हैं। एक छोटा सा बिखरा हुआ सा दल है।
अच्छा, कौन कौन है इस दल में मुख्य लोग?
कुछ किरदार बहुत अहम हैं, जैसे अनसेल्मो, एक बूढ़ा वफादार गाइड है, शिकार करता है पर किसी को मारने के ख्याल से भी कांपता है।
दिलचस्प। और
फिर है पाब्लो, कहने को तो वो दल का नेता है पर युद्ध ने उसे थका दिया है, डरा दिया है, शराबी है, शक करता रहता है, उसे लगता है जॉर्डन का मिशन आत्मघाती है।
मतलब वो मिशन के खिलाफ है।
हाँ, और फिर है पिलार, पाब्लो की साथी, लेकिन असल में देखा जाए तो वही दल की असली ताकत है, असली नेता। उसमें गजब की हिम्मत है, समझ है, और जरूरत पड़े तो वो बहुत कठोर भी हो सकती है।
अच्छा,
और वो जॉर्डन की हथेली देखकर उसमें मौत का साया भी देख लेती है।
अरे, और कौन है?
और एक है मारिया, एक जवान लड़की जिसे फांसीवादियों ने पकड़कर बहुत सताया था, इस दल ने उसे बचाया है। वो बहुत नाजुक है, सहमी हुई।
तो माहौल कैसा होता है जब जॉर्डन वहां पहुंचता है?
तनाव भरा, पाब्लो साफ तौर पर शक करता है, विरोध करता है, पर पिलार जॉर्डन का समर्थन करती है, तो शुरू से ही दल में एक खिंचतान दिखती है।
ये तो एक अजीब सा मिश्रण लग रहा है, डर, भरोसा, पुरानी चोटें, सब एक साथ।
हाँ, युद्ध ने उन्हें एक साथ ला दिया है, पर सबके अपने अपने बोझ हैं।
पूरी कहानी, जैसा आपने बताया, सिर्फ 3 दिनों में सिमटी हुई है, ये तो कमाल है।
हाँ, 3 दिन, पर जैसे एक पूरी जिंदगी। पहले दिन जॉर्डन अनसेल्मो के साथ उस गुफा जैसे शिविर में पहुंचता है, मिशन की बातें होती हैं।
और पाब्लो का विरोध?
वो खुलकर सामने आता है, कहता है ये सबको मरवा देगा, लेकिन पिलार और अगस्टिन जैसे कुछ और जोशीले लड़ाके हैं, वो तैयार हैं लड़ने को।
और मारिया?
वहीं जॉर्डन की नज़र मारिया पे पड़ती है, उसकी मासूमियत, उसकी आंखों का दर्द, जॉर्डन एकदम से उसकी तरफ खिंच जाता है।
और फिर
उसी रात, ठंडी तारों भरी रात है, वो एक ही स्लीपिंग बैग में गर्मी साझा करते हैं और उनके बीच एक बहुत गहरा, बहुत तेज प्यार शुरू हो जाता है।
इतनी जल्दी?
हाँ, जैसे वक्त है ही नहीं, जैसे मौत के साये में ही जिंदगी सबसे तेजी से धड़कती है। मारिया का वो सवाल है ना, क्या धरती हिली, वो उनके जुड़ाव की गहराई दिखाता है।
ये सोचने वाली बात है, क्या मौत का डर ही प्यार को इतना गहरा बना देता है, या ये युद्ध के बीच इंसानियत की जीत है?
हाँ, ये सवाल पूरी उपन्यास में गूंजता रहता है, क्या ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है या कुछ और?
दूसरा दिन क्या लाता है?
दूसरा दिन और भी मुश्किलों भरा है। पिलार जॉर्डन का हाथ देखती है, उसमें मौत का निशान पड़ती है पर छुपा लेती है। फिर जॉर्डन और अनसेल्मो पुल देखने जाते हैं। वहां दुश्मन की भारी तैयारी देखकर उन्हें एहसास होता है कि मिशन कितना ज्यादा खतरनाक है। और फिर दिन का एक बहुत अहम हिस्सा आता है। पिलार अपने गांव की कहानी सुनाती है, जब युद्ध शुरू हुआ था।
क्या हुआ था?
एक लंबा भयानक ब्यौरा देती है कि कैसे पाब्लो ने ही गांव के फांसीवादी सोच वाले लोगों को पकड़कर लाइन में लगाकर पिटवाया था और फिर चट्टान से नीचे फेंक दिया था।
बाप रे, मतलब क्रूरता सिर्फ एक तरफ नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, हेमिंग्वे यही दिखाते हैं, युद्ध अच्छे बुरे की सारी हदें मिटा देता है।
और कोई घटना?
हाँ, एक और बुरी खबर आती है। पास का ही एक दूसरा छापामार दल था, एल सॉडो का दल। वो दुश्मन से घिर गए थे एक पहाड़ी पर।
और
वो लड़े तो बहुत बहादुरी से, पर आखिर में हवाई हमले में मारे गए और दुश्मन सैनिकों ने बाद में उनके सिर काट दिए।
बहुत भयानक, इसका असर तो जॉर्डन दल पर पड़ा होगा।
हाँ, जाहिर है, हौसला टूटता है और ये भी पता चलता है कि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता है, मतलब अब अचानक हमला करने का फायदा नहीं रहा।
ये तो आने वाले खतरे का संकेत है।
बिल्कुल, एक मनहूस साया।
और फिर तीसरा दिन, अंजाम का दिन?
हाँ, तीसरा दिन, समय के खिलाफ एक दौड़। रात में बर्फ का तूफान आता है और डर के मारे पाब्लो भाग जाता है।
क्या लेकर?
जॉर्डन के डेटोनेटर और एक्सप्लोडर, मतलब पुल उड़ाने का सामान। मिशन अब लगभग खत्म।
जॉर्डन ने क्या किया?
वो टूट सा जाता है पर फिर हिम्मत जुटाता है, सोचता है कि डायनामाइट को हैंड ग्रेनेड से उड़ाएगा। बहुत खतरनाक तरीका ये है। पर सुबह होते होते पाब्लो वापस आ जाता है। शर्मिंदा है, अकेला महसूस कर रहा है।
सामान लाया?
नहीं, कहता है कि उसने सामान नदी में फेंक दिया, पर शायद पछतावे में वो लड़ने के लिए कुछ और आदमियों को साथ ले आया है।
मतलब दिल बदला, पर नुकसान तो हो गया?
हाँ, नुकसान हो चुका था। इसी बीच जॉर्डन ने एक संदेशवाहक एंड्रिस को जनरल गोल्स के पास भेजा था, ये बताने कि दुश्मन को पता चल गया है, हमला रोक दो।
क्या वो पहुंच पाया?
उपन्यास में एंड्रिस के सफर का भी जिक्र है। वो दिखाता है कि रिपब्लिकन खेमे में भी कितनी गड़बड़ियां थीं। उसका जरूरी पैगाम हर जगह देर होता जाता है।
तो ये जानते हुए भी कि शायद हमला रुक गया हो या दुश्मन तैयार हो?
हाँ, ये जानते हुए भी कि शायद सब बेकार हो, जॉर्डन और उसकी टीम तय समय पर पुल पर हमला करते हैं।
और
मिशन कामयाब होता है, पुल उड़ जाता है, लेकिन कीमत भारी चुकानी पड़ती है। अनसेल्मो मारा जाता है।
ओह, अनसेल्मो।
हाँ, और भागते वक्त दुश्मन का एक गोला जॉर्डन के घोड़े के पास गिरता है। घोड़ा गिरता है और जॉर्डन की टांग उसके नीचे कुचल जाती है। अब वो भाग नहीं सकता।
हाँ, यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वीरता और त्रासदी का संगम।
बिल्कुल।
वो जानते हैं शायद एंड्रेस का संदेश नहीं पहुंचा, फिर भी वो अपना काम करते हैं। इसे क्या कहें, कर्तव्य या जानते बूझते मौत को गले लगाना?
अंत बहुत ही भावुक कर देने वाला है। जॉर्डन मारिया को विदा कहता है, बहुत दर्द भरी पर हिम्मत देने वाली विदाई।
क्या कहता है वो?
कहता है कि उसे जीना होगा, क्योंकि जब तक उनमें से एक जिंदा है, वो दोनों जिंदा रहेंगे। वो उसे पिलार के हवाले कर देता है।
और फिर वो अकेला रह जाता है।
हाँ, अकेला, एक चीड़ के पेड़ के सहारे बैठा हुआ, मशीन गन गोद में, दर्द से बेहाल पर होश संभाले हुए।
इंतजार कर रहा है।
हाँ, दुश्मन के गश्ती दल का, ताकि उन्हें रोक सकें, उलझा सकें, अपने साथियों को भागने के लिए थोड़ा और वक्त दे सके।
उसके आखिरी विचार क्या हैं?
हार के नहीं, बल्कि उन 3 दिनों के लिए शुक्रगुजारी के, जो उसने जिए, जो प्यार उसे मिला। और जैसे ही दुश्मन का पहला सिपाही नजर आता है, वो निशाना साधता है और उसका दिल जंगल के चीड़ सुई वाले फर्श के खिलाफ धड़क रहा है।
और यही किताब खत्म हो जाती है।
हाँ,
इस अंत में एक अजीब सी शांति भी है ना।
हाँ,
बलिदान है पर जैसे एक सार्थकता भी। ये सिर्फ दुश्मन को रोकना नहीं, ये प्यार और कर्तव्य का अंतिम प्रमाण है।
बिल्कुल। क्या ये हार है या जीत, हेमिंग्वे हमें सोचने के लिए छोड़ देते हैं।
अगर हम पात्रों को देखें, उनके सफर को, रॉबर्ट जॉर्डन एक बुद्धिजीवी से एक प्रतिबद्ध सैनिक और प्रेमी बन जाता है।
हाँ, उसका अंदरूनी संघर्ष बहुत साफ दिखता है, कर्तव्य और प्रेम के बीच।
और मारिया,
मारिया जैसे अंधेरे से निकलकर रोशनी में आती है। प्रेम उसे फिर से जीना सिखाता है। वो युद्ध की शिकार भी है और इंसानी जज्बे की ताकत भी।
और पिलार, वो तो जैसे रीढ़ की हड्डी है उस दल की।
बिल्कुल, ताकत, समझदारी, थोड़ी क्रूरता भी, सब कुछ है उसमें। शायद वो स्पेन की आत्मा है, घायल पर झुकी नहीं।
और पाब्लो, वो युद्ध का दूसरा चेहरा दिखाता है, कैसे वो इंसान को तोड़ सकता है।
हाँ, बहादुरी से कायरता तक का सफर, पर अंत में उसमें भी पछतावे की एक झलक दिखती है।
और एंसेल्मो, वो नैतिक कंपास जैसा।
हाँ, जो मारना नहीं चाहता पर अपना फर्ज निभाता है। ये सब सिर्फ किरदार नहीं, ये युद्ध की आग में तपे हुए इंसान हैं। उनके डर, उनकी उम्मीदें, हेमिंग्वे ये सब बड़ी खूबी से दिखाते हैं।
और यहीं से उपन्यास के गहरे विषय उभरते हैं। सबसे पहला तो वो जुड़ाव का विचार है ना, जॉन डन की वो लाइनें,
कोई भी आदमी एक द्वीप नहीं है।
हाँ, और
किसी भी आदमी की मौत मुझे कम करती है क्योंकि मैं मानव जाति में शामिल हूँ।
और वो आखिरी लाइन, घंटी किसके लिए बजती है ये जानने के लिए कभी मत पूछो, ये तुम्हारे लिए बजती है।
जॉर्डन का बलिदान इसी बात का सबूत है, हम सब जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा विचार है प्रेम। मौत के माहौल में प्रेम जैसे एक विद्रोह बन जाता है।
हाँ, जिंदगी का दावा, ये किसी राजनीतिक नारे से ज्यादा ताकतवर लगता है।
फिर युद्ध की क्रूरता, हेमिंग्वे कुछ छुपाते नहीं। पिलार की कहानी, एल सोर्डो का अंत,
ये दिखाता है कि वहशीपन किसी एक खेमे तक सीमित नहीं होता, युद्ध इंसान को अमानवीय बना देता है।
और कर्तव्य और बलिदान का सवाल, जॉर्डन को पता है कि ऊपर शायद गड़बड़ है पर वो अपना काम करता है।
हाँ, उसका बलिदान एक आदर्शवादी चीज नहीं बल्कि एक जरूरी चुनाव बन जाता है।
और आखिर में वो 3 दिनों में पूरी जिंदगी जी लेने का विचार।
हाँ, मौत की नजदीकी हर पल को, हर एहसास को कैसे तीव्र बना देती है। जिंदगी की कीमत शायद लंबाई में नहीं, गहराई में है।
और ये सब हम तक पहुंचता है हेमिंग्वे की उस खास शैली से, आइसबर्ग थ्योरी।
कम शब्द गहरे मायने, सपाट दिखने वाले वाक्य पर अंदर तूफान।
कहानी ज्यादातर जॉर्डन के नजरिए से है तो हम उसके अंदर की उथल पुथल महसूस करते हैं।
हाँ, और भाषा का प्रयोग भी अनोखा है। स्पैनिश जैसा असर लाने के लिए अंग्रेजी में ही स्पैनिश मुहावरों का सीधा अनुवाद, पुराने शब्द।
हाँ, थी थाओ जैसे, वो एक अलग ही माहौल बनाता है।
और प्रतीक भी हैं, पुल जोड़ने और तोड़ने का प्रतीक, स्लीपिंग बैग प्यार की पनाहगाह, और वो जंगल की जमीन
जहाँ उसका दिल आखिरी बार धड़कता है, प्रकृति से अंतिम जुड़ाव।
कुछ पंक्तियां हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं, जॉर्डन वाली तो हैं ही।
और जॉर्डन का वो सोचना अंत के पास, दुनिया एक बेहतरीन जगह है और इसके लिए लड़ने लायक है और मुझे इसे छोड़ने से बहुत नफरत है।
हाँ, ये दिखाता है कि वो बदल गया है, अब उसे आदर्श से ज्यादा जिंदगी से प्यार है।
और मारिया का वो कहना, मैं तू हूँ और तू मैं है,
और हम दोनों एक दूसरे के सब कुछ हैं, प्रेम में पूरी तरह डूब जाने का एहसास।
ये उपन्यास पाठक को अंदर तक हिला देता है, दुख भी होता है पर एक अजीब सी प्रेरणा भी मिलती है।
हाँ, किरदारों की वो बेपनाह तीव्रता और अंत का वो दृश्य, वो भुलाई नहीं भूलता। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये इंसान होने के मतलब पर एक गहरा ध्यान है।
शायद हेमिंग्वे हमसे यही पूछ रहे हैं, क्या मुश्किल हालात में पाया गया सच्चा प्यार और निभाया गया कर्तव्य एक लंबे आम जीवन से ज्यादा मायने रख सकता है?
या शायद ये कि बड़े बड़े आदर्शों की लड़ाई का असली मतलब आखिर में व्यक्तिगत रिश्तों और मानवीय गरिमा में ही मिलता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।